स्वागत है सभी का आज की इस विस्तृत चर्चा में। तो आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन द्वारा जो बुक ऑफ अयूब है, मतलब अयूब की किताब, उसके सत्र 10 सन्स ऑफ गॉड एंड सेटन के नोट्स का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं।
बिल्कुल, और ये बहुत ही दिलचस्प विषय है।
हाँ, और हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि अयूब की ये कहानी केवल एक अकेले व्यक्ति के अनगिनत कष्टों की कोई साधारण या उदास दास्तान नहीं है, बल्कि ये अच्छाई, इंसान के भीतर छिपे स्वार्थ और सबसे बढ़कर ईश्वरीय नीतियों के परीक्षण की एक बेहद जटिल कहानी है।
एकदम सही बात है।
तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम आमतौर पर किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहां हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं।
बिल्कुल।
जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद रेखा साफ साफ दिखाई देती है और डॉक्टर बस उसके ओर इशारा करके समस्या बता देता है।
बिल्कुल।
हम सब चाहते हैं कि जीवन की हर समस्या उसी एक्सरे जैसी साफ और स्पष्ट हो।
मानवीय स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मतलब हमें चीजें तब ज्यादा सुरक्षित लगती हैं जब वे साफ साफ दिखाई दें।
हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
बिल्कुल, जब हम हर घटना को कारण और प्रभाव के स्पष्ट खानों में बांट सकें तो दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगती है। लेकिन देखिए, जब हम मानव पीड़ा, नियति और इन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है।
वहां कोई सीधा फॉर्मूला नहीं चलता।
एकदम सही। हम एक ऐसे वैचारिक परिदृश्य को देखने लगते हैं जहां कार्य और कारण के बीच का संबंध उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचना चाहते हैं, और अय्यूब की किताब इसी जटिलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इस चर्चा में केवल ये नहीं देखेंगे कि इस कहानी में क्या क्या घटनाएं घटी, बल्कि हम उस क्यों की तह तक जाएंगे।
और इस कहानी की शुरुआत ही हमारी हर आम धारणा को चुनौती देती है। मतलब हम पृथ्वी पर किसी अच्छे इंसान को देखने से शुरुआत नहीं करते।
हाँ, वो सीधा ऊपर चला जाता है।
बिल्कुल, दृश्य सीधे स्वर्गीय दरबार में खुलता है। वहां एक बहुत ही अनोखी बातचीत चल रही है। ईश्वर उस चैलेंजर से, यानी चुनौती देने वाले से, एक रिपोर्ट मांगते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए,
बताइए।
ईश्वर तो सर्वज्ञानी है ना, उन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए, फिर उन्हें किसी फील्ड रिपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब क्या ये दृश्य उन्हें किसी कमजोर या अनजान शक्ति के रूप में नहीं दिखाता?
ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन प्राचीन संदर्भ में इस दृश्य का अर्थ बिल्कुल अलग है। ये दृश्य ईश्वर को किसी अनजान शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद सक्षम और आदर्श राजा के रूप में स्थापित करता है।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, प्राचीन नियर ईस्ट यानी प्राचीन निकट पूर्व की दुनिया में एक महान राजा वो होता था जो अपने दूतों या अधिकारियों के माध्यम से अपने साम्राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखता था। ईश्वर यहाँ ठीक वही कर रहे हैं।
तो वो एक सिस्टम चला रहे हैं।
बिल्कुल, वो जानकारी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि उन्हें पता नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड के प्रशासन का एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो जो चैलेंजर है, जिसे मूल इब्रानी भाषा में हस्तान कहा गया है, वो कोई बुराई का प्रतीक या विद्रोही नहीं है जो अपनी मर्जी से काम कर रहा है।
तो फिर वो है कौन?
वह केवल स्वर्गीय दरबार का एक अधिकारी है जो अपनी सौंपी गई भूमिका निभा रहा है। उसका काम ही यही है।
अरे वाह, तो क्या हम ईश्वर को एक ऐसे सीईओ के रूप में देख सकते हैं जो अपने एक फील्ड ऑडिटर, मेरा मतलब है उस चैलेंजर से, स्टेटस रिपोर्ट ले रहा है?
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही।
क्योंकि हमारी आम धारणा तो ये होती है कि ईश्वर और शैतान के बीच किसी अंधेरे कमरे में कोई अजीब सी शर्त लग रही है, लेकिन ये तो किसी कॉर्पोरेट ऑडिट जैसा लगता है।
हाँ, एक फील्ड ऑडिटर की उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है। चैलेंजर का काम है सिस्टम में कमियां खोजना, ये देखना कि क्या नीतियां सही ढंग से काम कर रही हैं, और वो चैलेंजर अपनी रिपोर्ट में एक बहुत ही मजबूत तर्क पेश करता है।
क्या तर्क देता है वो?
है, उसके हर काम को आशीर्वाद मिला है, उसकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है, इसलिए अय्यूब का अच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसे हम निस्वार्थ धार्मिकता कहते हैं।
निस्वार्थ धार्मिकता?
हाँ, मतलब क्या अय्यूब सच में बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा करता है, या इसके पीछे उसका कोई फायदा छिपा है?
यानी क्या कोई इंसान बिना किसी निजी फायदे की उम्मीद के पूरी तरह से सही और धर्म के मार्ग पर चल सकता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है।
यही इस पूरी किताब का केंद्र बिंदु है। ये चुनौती दरअसल प्राचीन दुनिया के दो सबसे बड़े और गहरे सिद्धांतों पर सीधा प्रहार करती है। पहला है प्रतिफल का सिद्धांत, या जिसे हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं।
जैसे को तैसा वाला नियम। बिल्कुल, उस समय की पूरी दुनिया और यहाँ तक कि आज भी बहुत से लोग इसी सिद्धांत पर जीते हैं कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा।
ये तो बहुत ही गणितीय सोच हो गई, जैसे मैंने दो अच्छे काम किए तो मुझे दो अच्छे परिणाम मिलने चाहिए।
एकदम सही कहा आपने। और दूसरा सिद्धांत इससे भी गहरा है, जिसे महान सहजीविता कहा जाता है।
महान सहजीविता, इसका क्या मतलब हुआ?
प्राचीन मेसोपोटामिया और आसपास की संस्कृतियों में ये माना जाता था कि इंसान और देवता एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब देवताओं को भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इंसान उन्हें बलियां चढ़ाते हैं, और क्योंकि देवता इंसानों से खुश होते हैं इसलिए वे इंसानों को बारिश, अच्छी फसल और सुरक्षा देते हैं।
तो ये एक तरह का व्यावसायिक लेन देन हो गया।
बिल्कुल, एक शुद्ध व्यावसायिक लेन देन। चैलेंजर का तर्क यही है कि अय्यूब की धार्मिकता भी बस इसी सहजीविता का हिस्सा है। वो ईश्वर की पूजा कर रहा है क्योंकि ईश्वर उसे सुरक्षा दे रहे हैं। अगर वो सुरक्षा छीन ली जाए तो अय्यूब का असली चेहरा सामने आ जाएगा।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि ये एक वैचारिक परीक्षण है, तो अय्यूब अचानक इस पूरे मुकदमे का मुख्य गवाह बन जाता है।
बिल्कुल, बन जाता है।
मतलब ईश्वरीय नीतियों के बचाव का पूरा दारोमदार अब इस बात पर है कि अय्यूब अपने दुखों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।
और यहीं पर भाषा का एक बहुत ही शानदार और जटिल खेल शुरू होता है। चैलेंजर ईश्वर से दावा करता है कि जब अय्यूब से सब कुछ छीन लिया जाएगा तो वो ईश्वर को उनके मुंह पर कोसेगा।
उसे श्राप देगा।
हाँ, लेकिन अगर हम इस कहानी के मूल इब्रानी पाठ को देखें तो वहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। पहले और दूसरे अध्याय में जहां दुनिया भर के अनुवादों में कोसना शब्द लिखा है, वहां मूल इब्रानी शब्द है बराक।
बराक, इसका क्या मतलब है?
इसका शाब्दिक अर्थ होता है आशीर्वाद देना।
है? अगर उसे कोसना ही था तो सीधे कोसना क्यों नहीं लिख दिया? प्राचीन लेखकों को शब्दों के इस जलेबी जैसे खेल की क्या जरूरत थी? मतलब क्या वे बस पाठकों को उलझाना चाहते थे?
नहीं नहीं, प्राचीन साहित्यों में शब्दों का ये खेल उलझाने के लिए नहीं, बल्कि अर्थ को और अधिक गहरा बनाने के लिए किया जाता था। लेखक ये दिखाना चाहता था कि चुनौती में कितना भारी व्यंग्य छुपा है।
अच्छा, व्यंग्य के रूप में?
हाँ, चैलेंजर बराक शब्द का इस्तेमाल एक व्यंजना के रूप में कर रहा है। वो तंज कसते हुए कहता है कि बस उसकी संपत्ति छीन कर देखिए, फिर वो आपको मुंह पर आशीर्वाद देगा। यहाँ आशीर्वाद देने का मतलब स्पष्ट रूप से अपमानित करने या कोसने से है।
ये तो बिल्कुल रोजमर्रा के जीवन जैसा हो गया। जैसे अगर कोई हमारा बना बनाया काम बिगाड़ दे, कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे, और हम गुस्से में व्यंग्य करते हुए कहें, वाह तुमने तो बहुत महान काम किया है।
बिल्कुल ऐसा ही।
हमारा मतलब महान से नहीं होता, हमारा मतलब होता है कि तुमने सब बर्बाद कर दिया।
एकदम सही। और लेखक की चतुराई देखिए, इसके कारण एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पैदा होता है। चैलेंजर कहता है कि अय्यूब बराक करेगा, जिसका अर्थ वो व्यंग्यात्मक रूप से कोसने से लगा रहा है। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है और अय्यूब पर असल में विपत्तियां टूटती हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि अय्यूब असल में बराक ही करता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ में।
अरे वाह, मतलब वो सच में आशीर्वाद देता है।
हाँ, वो सच में ईश्वर को आशीर्वाद देता है, उनके नाम को धन्य कहता है। ये चैलेंजर के तंज का सबसे करारा जवाब है।
और ये देखने के लिए कि अय्यूब सच में क्या करता है, कहानी को बहुत ही चरम स्तर पर जाना पड़ता है। मतलब चैलेंजर को पूरी छूट मिल जाती है, और उसके बाद जो तबाही आती है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
बहुत भयानक।
पहले दुश्मन कबीले हमला करते हैं और उसके जानवर लूट ले जाते हैं, फिर आसमान से आग बरसती है और उसकी भेड़े जल जाती हैं, फिर एक भयंकर तूफान आता है और जिस घर में उसके सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं वो घर गिर जाता है।
हाँ, सब कुछ खत्म हो जाता है।
सब कुछ एक के बाद एक, बिजली की गति से। तबाही को इतना अचानक और इतना संपूर्ण क्यों होना पड़ा? कुछ तो बचना चाहिए था ना?
इस किताब की वैचारिक रूपरेखा को काम करने के लिए आवश्यक था कि विनाश में कोई कसर ना छूटे। देखिए, अगर थोड़ी सी भी संपत्ति बच जाती या कोई एक बच्चा भी जीवित रह जाता, तो यह तर्क दिया जा सकता था कि शायद अय्यूब इसलिए शांत है क्योंकि उसे उम्मीद है कि बचे हुए हिस्से के खातिर उसे अभी भी अच्छा बने रहना चाहिए।
अच्छा, मतलब वो स्वार्थ का एंगल अभी भी रहता।
बिल्कुल। उस निस्वार्थ धार्मिकता के सिद्धांत को पूरी तरह से परखने के लिए हर उस चीज को छीनना जरूरी था जो अय्यूब को ईश्वर की ओर से प्रतिफल के रूप में मिली थी। उसे एकदम शून्य पर लाना आवश्यक था।
और फिर आती है अय्यूब की प्रतिक्रिया। वो अपने कपड़े फाड़ता है, अपना सिर मुंडवाता है, जो उस समय शोक मनाने के गहरे सांस्कृतिक तरीके थे। लेकिन फिर वो साष्टांग प्रणाम करता है, जमीन पर लेट जाता है।
हाँ, वो ईश्वर के सामने झुक जाता है।
ये किसी हार मानने वाले का नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी स्वीकृति का प्रतीक लगता है। वो इस भयानक त्रासदी को किसी बुरी शक्ति या भाग्य का खेल नहीं मानता, बल्कि सीधे ईश्वर का कार्य मानता है। उसका वो प्रसिद्ध कथन, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा, यावे ने दिया और यावे ने ही ले लिया।
यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि अय्यूब का ये कथन सिर्फ एक धार्मिक रटाई हुई बात नहीं है, ये ब्रह्मांड में इंसान की जगह की एक बहुत गहरी दार्शनिक समझ है।
मतलब वो सब कुछ स्वीकार कर रहा है।
हाँ, अय्यूब ये मान रहा है कि ईश्वर पर हमारा कोई उधार नहीं है, हम इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आए थे, इसलिए हमारे पास जो कुछ भी था वो ईश्वर का एक स्वतंत्र उपहार था, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ईश्वर ने मुझे धोखा दिया।
उसने शिकायत नहीं की।
बिल्कुल नहीं, उसने ईश्वर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की।
और एक बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि अय्यूब यहाँ यावे नाम का उपयोग करता है, जबकि आगे के कई अध्यायों में वो ईश्वर के लिए अन्य शब्दों का इस्तेमाल करता है।
ये अय्यूब की प्रतिक्रिया की गहराई को दर्शाता है। यावे इसराइल के ईश्वर का व्यक्तिगत और सबसे पवित्र नाम था, जो एक बहुत ही घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। इतने अकल्पनीय दर्द के बीच में भी अय्यूब ईश्वर को किसी दूरस्थ या अज्ञात शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उसी व्यक्तिगत नाम से संबोधित कर रहा है। वह अपनी आस्था से पीछे नहीं हटता।
लेकिन देखिए, यहाँ मुझे मानवीय मनोविज्ञान को लेकर थोड़ी शंका होती है।
कैसी शंका?
किसी बहुत बड़े झटके या त्रासदी के तुरंत बाद शॉक की वजह से या अपने गहरे उसूलों के कारण कुछ समय के लिए मजबूत बने रहना थोड़ा आसान होता है। इंसान खुद को संभाल लेता है।
हाँ, शुरुआत में।
हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, घाव गहरे होते हैं, हर दिन की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, दोस्त ताने मारते हैं, तब हिम्मत टूटने लगती है। क्या अय्यूब सच में अंत तक इतना ही आदर्श बना रहता है?
आप बहुत ही सही जगह उंगली रख रही हैं। अय्यूब कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। और स्रोत सामग्री ये स्पष्ट करती है कि अय्यूब पूरी किताब में ये आदर्श प्रतिक्रिया बनाए नहीं रख पाता,
तो वो टूट जाता है।
हाँ, समय के साथ जब उसकी शारीरिक पीड़ा असहनीय हो जाती है और उसके दोस्त ये जिद करने लगते हैं कि उसने जरूर कोई भारी पाप किया होगा, तभी उसे ये सजा मिल रही है, तो अय्यूब टूटता है।
मतलब वो सवाल पूछने लगता है।
बिल्कुल, वो जवाब मांगता है, वो सवाल उठाता है, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ईश्वर से भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम से कम इस शुरुआती झटके में, इस पहली परीक्षा में, उसने ईश्वर पर गलत काम करने का आरोप लगाकर पाप नहीं किया।
उसने वो कर्मफल वाला जो लॉजिक था उसे खारिज कर दिया।
एकदम सही, उसने उस सौदेबाजी वाले सिद्धांत को खारिज कर दिया।
अब यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो मुझे सच में बहुत हैरान करता है। अय्यूब ने अपनी पहली परीक्षा दे दी है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा भारी सस्पेंस है जो बाहर से देखने वाले हर इंसान को पता है।
हाँ, हमें और आपको पता है।
बिल्कुल, लेकिन कहानी के मुख्य पात्र यानी अय्यूब और उसके दोस्तों को पूरी तरह से अनजान रखा गया है।
इसे साहित्य की भाषा में छिपी हुई जानकारी का सिद्धांत कहा जाता है, और ये इस पूरी कथा संरचना की सबसे शक्तिशाली चाबी है।
वो कैसे?
कहानी के पहले अध्याय में स्वर्गीय दरबार का जो दृश्य में दिखाया गया, वो ये पूरी तरह से साबित कर देता है कि अय्यूब निर्दोष है। ईश्वर खुद कहते हैं कि पृथ्वी पर अय्यूब जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये प्राचीन नियर ईस्ट की उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक धारणा को सीधे तौर पर खारिज कर देता है, जहां माना जाता था कि अगर किसी पर दुख आया है तो उसने जरूर कोई पाप किया होगा।
तो एक तरह से इस पूरे मुकदमे में अय्यूब कटघरे में है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं, मुकदमा अय्यूब पर नहीं बल्कि ईश्वरीय नीतियों पर चल रहा है। अय्यूब तो महज एक टेस्ट केस है।
अच्छा, बस एक उदाहरण?
हाँ, एक उदाहरण जिसे ये साबित करने के लिए चुना गया है कि क्या इंसान सच में ईश्वर से बिना किसी लालच के प्रेम कर सकता है या नहीं, और छिपी हुई जानकारी का महत्व यहीं आता है।
क्यों, उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
बिल्कुल, अय्यूब और उसके दोस्तों को स्वर्ग में हुई इस पूरी बातचीत के बारे में कहानी के अंत तक कभी कुछ पता नहीं चलेगा। यहां तक कि जब ईश्वर अंत में बवंडर में से बोलते हैं तब भी वो अय्यूब को ये नहीं बताते कि अरे वो तो मैंने चैलेंजर के साथ एक परीक्षण रखा था।
मतलब उसे कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता?
नहीं, कभी नहीं।
तो उसे अंधेरे में क्यों रखा गया? ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी इंसान को बिना बताए किसी बहुत बड़े और खतरनाक रियलिटी शो में डाल दिया गया हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अय्यूब को ये क्यों नहीं बताया गया कि वो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय बहस का मुख्य गवाह है?
अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। सोचिए, अगर अय्यूब को पहले दिन ही बता दिया जाता कि देखो स्वर्ग में एक बहस चल रही है और तुम्हें यह साबित करना है कि तुम निस्वार्थ हो, तो क्या होता? क्या तब वो सच में निस्वार्थ रह पाता? शायद नहीं। तब तो उसका हर कार्य एक परीक्षा पास करने के लिए किया गया कार्य बन जाता। उसे पता होता कि बस कुछ दिन दर्द सहना है और फिर वो ये साबित कर देगा कि वो सही है।
और यही वो बिंदु है, अगर उसे कारण बता दिया जाता तो उसकी प्रतिक्रिया का आधार ही बदल जाता।
बिल्कुल,
वो फिर से उसी कर्म के सिद्धांत में वापस चला जाता कि मैं ये परीक्षा पास करूंगा तो मुझे इसका इनाम मिलेगा।
हाँ, मतलब फिर से वही लेन देन शुरू हो जाता।
बिल्कुल, ईश्वर ने ही इस बातचीत को शुरू किया था, उन्होंने ही कार्रवाई को मंजूरी दी। यहाँ चैलेंजर महज एक उत्प्रेरक है जो कहानी को गति प्रदान करता है। ये पूरी कहानी इसलिए रची गई ताकि पाठक ये समझ सकें कि दुनिया को चलाने का ईश्वरीय तरीका किसी इंसान के बनाए हुए सरल फॉर्मूले पर काम नहीं करता।
और मुझे लगता है कि ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में बहुत गहरी जड़ों तक बैठी है। हम आज भी ईश्वर को एक तरह की वेंडिंग मशीन समझते हैं, सिक्का डालो और अपनी पसंद की चीज बाहर निकाल लो।
एकदम सही उपमा दी आपने। जैसे हम कहते हैं, मैंने 10 दिन उपवास किए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने दान किया, मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं होना चाहिए। हम अक्सर इसी तरह का गणित लगाते हैं।
यही वो मानसिकता है जिसे ये किताब तोड़ना चाहती है।
अय्यूब के दोस्त इसी मानसिकता के सबसे बड़े प्रतीक है,
जो उसे ताने मारते हैं।
हाँ, वो बार बार अय्यूब से कहते हैं कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है, स्वीकार कर लो। क्योंकि वे इस बात को पचा ही नहीं पाते कि एक निर्दोष इंसान को दुख मिल सकता है।
आज भी दुनिया में बहुत से लोग ईश्वर को बस एक फॉर्मूले की तरह देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक गलती है।
बहुत बड़ी गलती है।
ईश्वर की नीतियों को, उनके न्याय को और उनके ब्रह्मांड को चलाने के तरीके को किसी इंसान द्वारा बनाए गए सरल समीकरण में नहीं बांधा जा सकता। ये सच में दिमाग के बंद दरवाजे खोलने वाली चर्चा है। हमने आज देखा कि कैसे ये कहानी केवल एक व्यक्ति के व्यक्तिगत कष्टों की कहानी नहीं है, बल्कि इस पूरी मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की कहानी है, जो मानती है कि अच्छाई हमेशा किसी फायदे के लिए की जाती है।
बिल्कुल।
हमने इब्रानी भाषा के उस शानदार चमत्कार, उस बराक शब्द के विरोधाभास को समझा, चाहे तंज और असली आशीर्वाद के बीच की रेखा कितनी बारीक हो सकती है।
हाँ, वो भाषा का खेल बहुत अद्भुत है।
और हमने छिपी हुई जानकारी के महत्व को समझा, जो ये साबित करती है कि कई बार दुनिया में जो हो रहा होता है उसके पीछे के कारण हमारी मानवीय समझ और हमारे गणितीय फॉर्मूलों से बहुत परे होते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल पहले लिखी गई ये कहानी आज भी हमारे दिलों को इतनी गहराई से छूती है। ये हमें हमारे अपने जीवन के दुखों और हमारी अपनी अच्छाई के वास्तविक कारणों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है।
सही कहा।
ये हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं और ब्रह्मांड हमारी अपेक्षाओं या हमारी शर्तों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है।
और इसी विचार के साथ जब हम आज के इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं वापस उस मेडिकल एक्सरे वाले विचार पर आना चाहती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी।
वो एक्सरे मशीन वाली बात।
हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्या का कोई स्पष्ट एक्सरे हो। हम चाहते हैं कि हमें हर दुख का सटीक कारण पता चल जाए। लेकिन ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है।
क्या सवाल?
ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी इंसान के जीवन में आने वाली हर मुसीबत, हर चुनौती या हर दर्द के पीछे का जो वो स्वर्गीय कारण है या असली उद्देश्य है, वो उसे हमेशा स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, तो क्या उसकी अच्छाई सच में कभी निस्वार्थ रह पाएगी?
बहुत गहरा सवाल है।
या फिर वो अच्छाई केवल एक सोची समझी व्यावसायिक डील बनकर रह जाएगी, जहां इंसान केवल इसलिए अच्छा बनेगा क्योंकि उसे पता है कि अंत में उसे इसका क्या फायदा मिलने वाला है। बिना कारण जाने अच्छा बने रहना ही शायद सबसे बड़ी परीक्षा है।
बिल्कुल, यही असली धार्मिकता है।
तो आज की इस विस्तृत चर्चा से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी एक नए विषय के साथ वापस आएंगे।